Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum everyone. We are back with Psych Baithak. This is Yusuf Raza and Azam Khalid, and today we have a very special guest. And as most of you already know, Dr. Ali Hashmi. Before I ask him to join us, I'll just bring Azam in. And here's Azam. Assalamu alaikum, Azam.
Wa alaikum assalam. Kaise hain?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
आई होप कि बाकी सारे भी ठीक ही होंगे। तो यूसुफ और मैंने ये सोचा कि हम लोग बजाय इसके के हम लोग खुद अपनी कम अकली में कुछ अब बातें करें, तो क्यों ना हम किसी ऐसे गेस्ट को लेकर आए कि हु हैज बीन एन इंस्पायरेशन टू अस एंड ऑल्सो जिनकी किक्स से, जिनके थपड़ों से, जिनके डांटों से हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, हमें खुद टू कीप आवर सेल्फ स्ट्रेट के बिकॉज देयर इज सो मच इन द मार्केट। मार्केट में इतना कुछ है साइकेट्री के बारे में कि इट्स इजी दैट यू गेट लॉस्ट। सो वन ऑफ आवर इंस्पिरेशंस, आई वुड से आवर मेंटोर्स। सो आई थिंक बजाय इसके कि हम लोग मजीद लोगों का टाइम ज़ाया करें, डॉक्टर अली हाशमी
सर, अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
सर, कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई वुड जस्ट लाइक टू गो ऑन रिकॉर्ड, आजकल लोग सेंसिटिव है, मैंने आप में से किसी को कभी हाथ नहीं लगाया, कोई किक नहीं लगाई और कोई एक्सेप्ट मेटाफोरिकली स्पीकिंग, सो जस्ट टू गेट दैट ऑन द रिकॉर्ड।
सिर्फ मेटाफोरिकल थप्पड़ ही बहुत इम्पोर्टेंट थे, हम लिटरली साइकाइट्री पाकिस्तान में साइकाइट्री से उम्मीद हार चुके थे, एंड थैंकफुली वी वर एबल टू सी अ लॉट ऑफ लाइट।
आई थिंक योर ऑडियंस शुड आल्सो नो दैट अनलाइक मी, आई एम जस्ट अ गार्डन वैरायटी साइकियाट्रिस्ट, बोथ ऑफ यू हैव ऑलरेडी सरपास्ड मी बाय फार। आज़म, यू आर डूइंग योर पीएचडी इन साइकोलॉजी फ्रॉम द यूएस, and Yusuf, you are planning to do, I think, a PhD in psychology, and I think both of you have done some advanced degrees in philosophy also. So your knowledge base and your skills are no less than mine, and in many ways far advanced to mine. So there's nothing that makes a teacher happier, obviously, than to see their students achieve more than I could ever dream of. So I'm very happy to be here, very proud to be here.
Sir, thank you so much. Sir, aapki inspiration is what allows for us to do whatever it is that we're doing. There's very few psychiatrists who would appreciate ke psychology ki ya philosophy ki and baaki sari cheezon ki ahmiyat kya hai psychiatry ke liye aur mental health ke liye in general, which is why you're our first guest on this show. So thank you so much for agreeing to be here and apne time nikala. So we go on with the topic for the day, Azam.
यस सर, हम लोग आपको जो बुलाने का एक तो सबसे बड़ा मकसद कि हम आपको आपसे मिल सकें, लेकिन फॉर ऑडियंस सर, जो हमारा आज का टॉपिक है सर, आप उसको कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन एडोलेसेंस? क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि बच्चों को शायद मेंटल हेल्थ हेल्प की जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ बड़े बूढ़ों का या वो लोग जो कि बेरोजगार हैं या जिनके कोई मसले हैं उनको इसकी जरूरत है, और बच्चों को आमतौर पे कंसीडर ही नहीं किया जाता। उसके बारे में सर आपका क्या एक्सपीरियंस?
Okay, so इसमें ये आज़म, as you know, I'm not a of course psychiatry में specializations भी बहुत सारी हो गई हैं, and I'm not a child and adolescent psychiatrist, which is a separate specialty, but as from the perspective of a general psychiatrist and a father really, which is a more useful experience than being a psychiatrist when you see those things in your own home. So I mean, I think to say कि adolescents में, teenage में या बच्चों में mental health पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है is very silly, because ये तो वो ages, you know, when you're young, and then when you're in your teens, this is the time when your personality is actually forming, right? All your world views, education आप सारी हासिल कर रहे हैं, आपकी जो personality है वो बन रही है, वो mold हो रही है, आपके perspectives बन रहे हैं जो probably largely continue to be determined by what happens in your childhood and your adolescence and your early adulthood. एक तो ये बात है। दूसरा ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी नो फ्रॉम फ्रॉम यू नो फ्रॉम द नॉलेज बेस दैट वी हैव. एक तो हमारा जेनेटिक एक कोड है जो हम अपने साथ लेके माँ के पेट से लेके आते हैं. But we know that the environment we grow up in, the education we receive, the culture we grow up in, the, you know, all of those things have a huge impact on our mental functioning, how we look at the world, how our personalities develop, and also our jo hamari tendency hai toward mental health and you know the positive, you know, the mental excellence ke liye, mental health ke liye, ya tendency toward mental illness. So, ये उस चीज को जो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको डिटरमिन करती है. उसमें जो अर्लीस्ट जो फॉर्मेटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे चाइल्डहुड के होते हैं, जो हमारे घर के होते हैं, फिर हमारे स्कूल के होते हैं, फिर हमारे कॉलेज के होते हैं, यूनिवर्सिटी के होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कूल में हमारे पीयर ग्रुप होता है. सो ऑफकोर्स यू नो एक्चुअली चाइल्ड मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इज इनफैक्ट इन सम वेज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन एडल्ट मेंटल हेल्थ, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट वहां से हो रहे हैं इन सम वे नॉट नेसेसरली. सो यू नो फॉर इंस्टेंस you know, you can have onset of mental health problems as an adult or as an older person also, which are not connected to your childhood or your teenage. Lekin agar childhood or teenage mein kuch experiences aise hue hain which have left you know some marks or which have molded your personality in certain ways or left some tendency towards problems, to phir wo cheez baaki ja ke aggravate ho sakti hai obviously. So, you know, it's extremely important. I think I'm very happy that you guys have chosen adolescence and mental health pe focus kar rahe hain. Wo us pe dhyan dena adolescent mental health pe in many ways is as important or even more important than paying attention to mental health beyond adolescence.
Sir, aamtaur pe jab hum log is khas is domain ke bare mein baat karte hain adolescent mental health हेल्थ के बारे में, तो हम लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि इट अकर्स बिकॉज ऑफ द बुलिंग, जो कि ट्रॉमा होता है और बुलिंग सिर्फ स्कूल में होती है. सर उस पर मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ बात होती है. सर क्या आपके ख्याल में कैन बुलिंग ऑल्सो अकर इन द फैमिलीज के, और वो भी क्लोज रिलेशनशिप से, कि जो घर में जो बहन भाई हैं, जो माँ बाप हैं, क्या बुलिंग या ट्रॉमा वहाँ से भी ओरिजिनेट कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पे ये समझा जाता है कि माँ बाप तो आपके बहुत सिंसियर हैं, बहन भाई भी सिंसियर हैं, इवन डिस्पाइट ऑफ सिंसियरिटी क्या ट्रॉमा अन इंटेंशनली भी हो सकता है?
आई थिंक बिल्कुल हो सकता है. उसमें मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस हैज ऑफ कोर्स चेंज्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज a teenager and a student, to the time I was a young person, to the time I became a professional, and then I got married, and then I had my own children, and now I'm the father of teenagers. So it's interesting to see ki insaan ka apna perspective us bare mein kis tarah se change hota hai. So I think ek perspective usme ye hai, aur uspe maine likha bhi hai education ke wale se, ki in our culture parenting is a much more directed and much more, in some ways, a much more rigid exercise. So जब मैं अब आप अमेरिका में इस वक्त पढ़ रहे हो, तो आपने वहां पे भी ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे पेरेंटिंग का स्टाइल और है. अब वो एक लंबी बहस है कि ऐसा क्यों है और वो कल्चर क्या है वगैरह वगैरह, बट ब्रीफली अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में चिल्ड्रन आर गिवन मच मोर लैटिट्यूड टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, देयर एजुकेशन, ऑल ऑफ दीस थिंग्स इन अ मच फ्रीयर वे. उनको ये फ्री हैंड दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से करें जो आपने करना है. उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, जाहिर है. हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, पेरेंट्स आर मोर हैंड्स ऑन, वन कैन से, कि इस तरह करो, इस तरह ना करो, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है. उसके भी फायदे हैं, नुकसान भी हैं उसके. उसमें मेरा ख्याल होता ये है कि जब यू नो व्हेन चिल्ड्रन मूव फ्रॉम लेट्स से मिडिल स्कूल या मिडिल स्कूल से हाई स्कूल की स्टेज पे, जब वो एडोलेसेंस में एंटर होते हैं, 12 13 14 साल की उम्र में, जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस बॉडीली हार्मोन्स एंड ऑल दैट, एक मेंटल चेंजेस भी जाहिर साथ आती हैं, यू नो, एंड चिल्ड्रन आर सपोज्ड टू एक्चुअली बिकम मोर ऑटोनोमस, यू नो, दे डेवलप द एबिलिटी टू क्वेश्चन अथॉरिटी, टू मेक देयर ओन डिसीजन, और दे वांट टू, एटलीस्ट दे वांट गाइडेंस, बट दे डोंट वांट ए रिजिड वे ऑफ सेइंग ये करना है, ये नहीं करना. तो वहां पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में इसलिए शुरू हो जाता है कि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स जो है, फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रीजन, बच्चों को डायरेक्ट करते हैं कि आप इस तरह से करो, इस तरह से ना करो, इस तरह ये ठीक है, ये गलत है. विच यू नो आई मीन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ फादर, इट्स यू नो लाइक आई सेड, मैंने पहले कहा कि मेरा परस्पेक्टिव उस वक्त जो था जब मैं टीनेजर था, अब मैं फादर हूँ टीनेजर, का थोड़ा सा चेंज हुआ है. सो वो अब उस तरह से चेंज हो गया कि यार मेरे जो टीनेज बच्चे हैं वो दे माइट वॉन्ट टू डू थिंग्स दैट दे थिंक आर गुड फॉर देम नाउ बट दे माइट हर्ट देम लेटर ऑन. But I, as a father, need to find a balance to where I allow them to explore their own interests and give them some latitude to explore those interests. And then, uske mutabik ek certain framework bana ke uske mutabik sunao. Aur you know, rigid tarike se bachon ko karwana ki aise karo, aise na karo, ye theek nahi hai. So I'll give you an example. Hamare mulk mein, Pakistan mein, generally, aur main kyunki King Edward mein padhata hu, aap bhi hamare sath wahan pe kaam aapne kiya hua hai, wahan rahe ho, to ज्यादातर जो हमारे पास, जैसे एग्जांपल, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं मेडिकल कॉलेज में, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट करने का एक डिफॉल्ट तरीका होता है, एज यू नो, वो ये कि जो बच्चे शुरू से पढ़ाई में अच्छे होते हैं, फर्स्ट आ रहे होते हैं, उनको कहा जाता है डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं. और मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने के कई सालों के बाद उनको ख्याल आता है कि यार पता नहीं मैंने ये करना भी था कि नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, उनको कभी इस चीज पर इनकरेज नहीं किया गया कि आप खुद सोचें कि क्या आप करना चाहते हैं. सो उसके बाद फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि वो, फॉर इंस्टेंस, आजकल मैं एक यंग बंदा है हमारा, ग्रेजुएट है कॉलेज का, उसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, जिसकी एक सेंट्रल इशू ये है दैट ही हैज नेवर बीन वेरी हैप्पी, ही वाज नेवर वेरी हैप्पी बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, ही इज अ ब्राइट बॉय एंड ही इज अ डॉक्टर नाउ, बट ही इज नॉट रियली वेरी हैप्पी विद दैट, ही डजंट रियली वांट टू डू दैट, ही हैज अदर इंटरेस्ट, वेब डिजाइनिंग, कोई एक उसकी भी चीजें, लेकिन सो ही इज स्ट्रगलिंग विद द आइडिया ऑफ शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस, लेकिन डॉक्टर बन गया है. सो तो वहां पे जो आपने बात की कि फैमिली, क्या फैमिली है वो बच्चों को, आई मीन यस यू कैन कॉल इट ट्रॉमा, आई मीन अगर एक तो होता है ना कि एक तो होता है कि यू नो फ्रैंक अब्यूज, बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. सो फिजिकल अब्यूज इज वन व्हिच इज क्लियरली यू नो क्लियरली, और हमारे मुल्क में वो भी अभी भी बहुत कॉमन है. सो दैट्स क्लियरली नॉट अप्रोप्रिएट. You know, the whole idea of, so verbal abuse is another, which is also not appropriate. Emotional abuse, I'm a little bit, as you know, I'm a little bit hesitant about classifying that, because wo emotional abuse ka jo standard hai, jo best mein hai, aur yahan pe hai, wo thoda sa farak hota hai. You know, we have a different way of doing it. Phir, there's a difference between genders also, ladkiyon ke saath, ladkon ke saath treatment ka thoda sa, you know, uska se hota hai. So, lekin haan, families mein, क्या फैमिलीज में, फैमिलीज का ऐसा होता है कि उससे बच्चे ट्रॉमेटाइज होते हैं, बिल्कुल होता है. एंड दिस इज कीपिंग असाइड कि अगर कोई फ्रैंक ट्रॉमा हो रहा हो, फिजिकल ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज हो रही है, वो तो और चीज है, वो तो जाहिर है, वो तो दैट कैन नेवर बी जस्टिफाइड अंडर एनी कंडीशंस. लेकिन आई थिंक व्हाट यू आर आस्किंग इज कि अगर किसी बच्चे को उसके अपने इंटरेस्ट, उसके अपने आइडियाज, उसकी अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं दी जा रही और उसको फोर्स किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पैराडाइम के तहत, ये पढ़ो, ये ना पढ़ो, ये बिलीव करो, ये ना बिलीव करो, तो क्या वो भी ट्रॉमेटिक होता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन कीप इन माइंड कि बच्चे या जो घर के जो अफराद है वो तो एक इकोसिस्टम है ना. सो वो फैमिली जो है वो एक लार्जर इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, जो सोसाइटी है. सो अगेन एज माय पर्सपेक्टिव फ्रॉम एज अ पॉइंट ऑफ फादर इज I need to give my children my point of view because they are getting other points of view from larger society, from media, from other people around them, from their peers. You know, let's not forget that adolescence mein adults ki jo importance hai teenagers ke liye wo kam ho jati hai, apne peers ki importance bahut zyada hoti hai unke liye. So their most important influence is their peer group. That's where they are getting most of their information, their advice, all of that. So वहां से तो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको. सो अगर सो यू नो आई नीड टू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस ऑल्सो, यू नो माई फादर एज यू नो ही इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड यू नो मच वाइजर मैन देन आई एम. उन्होंने इसको इस तरह पुट किया था कि यार आप अगर मैं अपने बच्चों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, आई एम विद होल्डिंग ऑल ऑफ दोज इयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड नॉट गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, कि वो बुरा भला कहेंगे. अब मेरे बच्चे टीनेजर हैं, टीनेजर का एक होता है एटीट्यूड कि जो भी आप उनसे बात करते हैं उनकी 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 माता उनका ठंडा हुआ होता है, ओ बाबा व्हाट यू नो बाबा यू सो यू ओल्ड मैन, यू नो दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ फोर यू नो सॉर्ट ऑफ एक वो मोहब्बत भरा, एक मोहब्बत भरी कंटेम्प्ट, यू नो लविंग कंटेम्प्ट या कंटेम्पचुअस लव या व्हाटएवर, तो उनका एक होता है तरीका. सो दैट डजंट मीन दैट आई शुड गेट अपसेट विद देम, स्टॉप टॉकिंग टू देम और स्टॉप गिविंग देम माय, बट आई थिंक यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट समवन लाइक मी हु इज डूइंग इट इन अ न्यूअंस्ड वे. आप बात कर रहे हो बच्चों को जबरदस्ती फोर्स करके किसी परस्पेक्टिव की तरफ पुश किया जा रहा है, ये पढ़ो ये ना पढ़ो, इससे ना मिलो, ये करो ये ना करो, फिर और भी रिजिड तरीके से हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एक रिलीजियस एक बहुत ज्यादा रिजिडिटी है, तो यू नो सेल फोन यूज करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यू नो ऑल काइंड ऑफ गिल्ट जो बच्चों को, यू नो मुख्तलिफ किस्म की गिल्ट इंक्लूडिंग रिलीजियस गिल्ट जो बच्चों को सिखाई जाती है. So that, you know, that, but, you know, of course, that that can be traumatic and that can be difficult for children. It can cause problems, including mental health problems, in the short term and in the long term.
So if I may, I, mujhe ek, just a couple of months back, there was a patient that I was treating. He was a teenager, 16, 17. And his symptoms started when his father became really religious. Or when his father became really, really religious, this guy started engaging in self-cutting behavior or sara kuch. And when he was given antidepressants, whoever he went to did not bother talking to aaya kahan se, masla shuru kahan se hua. To no avail, his suicidality, his insomnia was worsening. To jab usse finally baat ki, to he was like, meri kuch particular practices hain, meri कुछ जेंडर इंटरैक्शंस हैं यूनिवर्सिटी के अंदर विच माय फादर डज नॉट अप्रूव ऑफ, और मेरे वालिद साहब ठीक कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं हूँ बुरा, एंड अगर मैं हूँ बुरा तो आई डिजर्व दीज, ये जो मैं कट्स अपने आप को लगा रहा हूँ, मुझे आई मीन दिस इज व्हाट इट इज, एंड that's something that we
okay, I'm curious, Yusuf, we've had discussion on religion and religiosity before, so let me pose you a question. So we are talking about the normal emergence of adolescent sexual feelings jo ki hoti hain, this is part of puberty, it happens as you enter puberty and as you go along. Recently maine koi reshare kiya tha ek article mein, maine valentines day ke bare mein kuch likha tha. Har saal, you know, every फेब्रुअरी पाकिस्तान में दौरे पड़ना शुरू होते हैं, जब फेब्रुअरी आना शुरू होता है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो आई रोट एन आर्टिकल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ के व्हाई आई थिंक समथिंग कॉल्ड लव इन ऑल इज फॉर्म्ड और समथिंग. सो इसमें अब ये यू रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर व्हिच इज अ टीनएजर, स्पेशली टीनएज बॉय हु इज ग्रोइंग अप इन अ वेरी रिलीजियस फैमिली इन व्हिच all sexual feeling and sexual behavior has been equated with sin, right? And with guilt.
Even thoughts. Behavior तो आगे की बात. Even thoughts.
Okay, thought, right. Okay. So वो अब वो आपने इस तरह कहा कि वो शायद कॉलेज में पढ़ता है, वो जो भी लड़का है, और कॉलेज में उसकी शायद कोई दोस्त हैं, कुछ कोई या नॉट इवन दो और लड़कियां पढ़ती हैं, जो कुछ भी है, उसको वो ख्याल आते हैं लड़कियों के बारे में, व्हाटएवर, उसको सेक्स के बारे में, व्हाटएवर, जिससे कि उसको रिलीजियस गिल्ट होती है, जो जाहिर है कि रिलीजियस गिल्ट जो है वो इट इज अराइजिंग फ्रॉम ए रिलीजियस एटमॉस्फेयर इन द हाउस, और उस और क्योंकि क्योंकि वो इतना ज्यादा वो एक वो बताया गया उसको कि ये बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, उससे उसकी रिलीजियस गिल्ट और बढ़ रही है, जिससे उसको डिप्रेशन हो रहा है, जिससे वो अपने आप को काट रहा है, सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं. सो हाउ वुड यू आई मीन यू नो हाउ वुड आई एम आस्किंग यू यूसेफ हाउ वुड यू बिकॉज यू नो मोर अबाउट you know aapki quran ki study aur reading se mere se bahut zyada hai, so how would you advise a person like this ki yaar ye theek hai, isme koi kharabi nahi hai, ye thoughts aana hai or whatever, yeah, if he wants to go now, you know, clearly wo jo maine article mein likha tha ki ye ek natural biological process hai is age mein opposite sex ya sexual thoughts aana ya jo bhi hai, lekin you know social harmony ke liye now we don't want it to become where it is like in America or the West with you know teenage pregnancies and all this kind of stuff, wo bhi to ek social ill ban jata hai na, to yahan pe us cheez ko suppress isliye kiya jata hai ki us social ill ko prevent kiya jaye ke you know out of wedlock pregnancies and all this, and we don't want that happening, wo uske apne problems create ho jati hai obviously. So lekin kis tarah se reconcile kiya jaye, maine article mein likha tha ki purane zamane mein ancient culture mein as soon when the boy or a girl reach puberty, which you know usually at the age of 13 12 13 14, so unki shaadi kar di jati thi taaki wo is cheez ko yani us cheez se problem na ho, so they can indulge those desires within the bonds of a marriage or whatever. Ab hamare modern zamane mein problem ye hai, number one ladkon ke liye problem ye hai ki the earning potential of young men is delayed into their 20s or whatever, and so they can't get married at 13 or 14 or 15. It's not possible. They can't support a family, number one. लड़कियों के लिए प्रॉब्लम ये है, बायोलॉजिकली स्पीकिंग अ गर्ल इज नॉट रियली फिजिकली रेडी टू बिकम अ मदर एट द एज ऑफ 12 और 13 और 14, शी कैन डेवलप वेरियस मेडिकल इश्यूज एंड ऑल दिस इफ शी हैज रिपीटेड. हमारे मुल्क में होता है, यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेज होती हैं या अंडर एज मैरिजेज होती हैं, लड़कियों की रिपीटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, वो बीमार हो जाती हैं, वी यूज टू सी दिस पेशेंट्स इन मेयो एंड यू नो दे गेट वेरी सिक एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. सो दैट नेचुरल अर्ज, द सेक्सुअल अर्ज हैज टू बी सप्रेस्ड in the interests of other things, social interests, until such a time that the young man or the woman both are economically ready to support the responsibility of a family, and physically, especially the girl, because the girl is one who has to carry the pregnancy, she's physically able to carry the pregnancy without it having a harmful effect on her health. So ab agar wo ladka 17 saal ka hai, 16 saal ka hai, 18 saal ka ladka aa raha hai, wo aapke paas aata hai religious guilt leke. So I'm curious, how did you counsel this young man? What did you do for him?
So with that particular person, the way it started was to identify with him. He was equating, okay, my father's interpretation, jis tarah mere walid sahab religion samajh rahe hain aur mujhe samjha rahe hain, jisme is tarah ke khayalat aana bhi aur mera university mein padhai ke liye jana bhi, it's completely wrong, right? It's a sin, right? So I started off by saying, okay, your father's interpretation, is that religion? Is that the only interpretation? And his immediate response was yes. So pehla pura session isi mein laga tha to create the space ki this is one interpretation that your father is giving. There is a great chance of fallibility there ki itni rigid aur yehi ek interpretation ko religion se equate kar dena may not be the way to go about it. There's other possibilities. That there are other ways of looking at it, जिनमें आपकी जो एक natural experience है उसको आपकी आपको validation मिलेगी, जो आपकी material realities हैं जिसमें आप रह रहे हो, जहाँ आपने जिस माशरे में आपने survive करना है उसको भी खातिर में लेना ज़रूरी है. Like your particular situation has to be dealt with. So the first session was entirely dedicated to that, and then when that was achieved, where he was towards the end, जो भी हमारा Socratic dialogue चलता है, towards the end he was convinced कि हाँ और possibilities भी हो सकती हैं that I can look into, जिसमें मेरा ये करना इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ. And it was pretty dramatic. He came back the next session and he was like कि self-cutting खत्म हो गई है और insomnia काफी हद तक बेहतर हो गया है. He's actually, he's not as guilty as he was before, but unfortunately, he discussed everything he discussed with me with his father, and then he never came again. So he wasn't allowed to have the third session.
His father thought you did your duty. That's all right.
Okay. His father thought I was a religious person. I would corroborate the father.
That actually raises another very important point, which is the way the core function mental health. हमारे ख्याल में उसका मतलब ये है कि इंसान की ख्यालात को आज़ाद किया जाए, उनको हमने पहले बात की कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, अपने जो उनके जो बाहर से जो आइडियाज उन्होंने इम्बाइब किए हैं बगैर सोचे समझे, उसको उनको एग्जामिन करें और देखें कि वो खुद क्या बिलीव करते हैं, क्या करना चाहते हैं. दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल फीचर्स ऑफ व्हाट वी ट्राई टू हेल्प पीपल डू, राइट? लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होता है, जाहिर है कि पहले भी जिस तरह शायद हमने बात की थी कि a person with mental illness or mental illness itself doesn't exist in a vacuum. A person is exhibiting some symptoms of mental illness within a family, which is within a community, which is within a society. And sometimes, as families ke andar, one person sort of gets designated as the container of the family dysfunction. सारी negative feelings, सारे एक उनको ये कह दिया जाता है कि ये बंदा बीमार है, लेकिन जब हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो फैमिली के अंदर जो डिसफंक्शन चल रहा होता है, आपस की रिलेशनशिप्स के इश्यूज चल रहे होते हैं, वो आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं. और फिर जब आप कोशिश करते हैं उसको फिक्स करने की, तो फिर लोग कहते हैं ये तो नहीं, हमने आपको कहा था आप इसको ठीक करें, हमने ये तो नहीं कहा था कि आप सारी फैमिली को लेकर बैठ गए, हमने तो कहा था इनको ठीक करें,
उसको ठीक.
तो आप इनको क्यों नहीं ठीक कर रहे, आप हमें क्या कह रहे हैं? और फिर उसके बाहर अगर चले तो फिर फैमिली से बाहर जो लार्जेस्ट सोसाइटी है उसमें अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में तो नहीं है. उसके बारे में हम साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ वाले उसके लार्जेस्ट सोसाइटी में एक इनडायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली थ्रू वन पर्सन जिसको हम ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग डिलेमा कि आप कहाँ पे आप चाहते हो इसको मैनेज. in my experience, I've sort of tried to look at it two ways. One is, you know, you want to relieve a person's distress. जो उसकी तकलीफ है उसको आप दूर करना चाहते हैं यानी जितना आप कर सकते हैं और उसमें बात शायद हमने यहाँ से शुरू की थी कि दवाई जो भी है सो दवाइयों का या जो साइकोथेरेपी का काम ये भी होता है कि इंसान की अपनी इंटरनल डिस्ट्रेस को जरा कम किया जाए जहां तक मुमकिन है लेकिन इस चीज को ओवरलुक ना किया जाए कि वो जो दूसरी जो चीजें हैं वो उसमें ऐड कर रही हैं उसमें शामिल हो रही हैं सो वी डोंट वांट टू प्रिटेंड कि वो चीज है ही नहीं बट वी डोंट वांट टू प्रिटेंड कि इस पे काम नहीं किया जा सकता सो एक इंसान पे काम किया जा सकता है लेकिन एक हद तक और अगर वो इतने करना चाहते हैं वो फिर उनकी अपनी चॉइस भी है ना कि अगर वो चाहते हैं कि इससे ज्यादा हम चाहते हैं आप जिसने आपने खुद ही बताया कि वो थोड़ा सा उसकी तबीयत बेहतर हुई फिर उसने अब्बू को बता दिया इट्स वेरी कॉमन बाय द वे हमारे यहाँ पे यू नो देर आर वेरी फ्यू सीक्रेट्स एटलीस्ट इन लाहौर आई मीन यू नो पाकिस्तान में हमारा एक कल्चर ऐसा है कि हम सब चीजें आपस में आई ऑफन यू नो जोक हमारा मेयो हॉस्पिटल में जब काम करते हैं तो मेडिकल डिसीजन मेकिंग जो है इट्स रेयरली एवर कि एक मरीज जो है वो कोई आपसे किस तरह करना है तो मैं ऑफन कहता होता हूँ आजम इज लाफिंग नाउ कि फैसला एक इंसान कभी नहीं कर सकता फैसला सिर्फ पंचायत करती है फैसला पंचायत करेगी एक बंदा नहीं कर सकता वो उसने पहले अम्मी से पूछेंगे अब्बू से पूछेंगे पूरी क्योंकि वो हमारा कल्चर है ना वी आर बेस्ड ऑन वी आर सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन आपकी लंबी बहस हो जाएगी सो वी वोंट गो देयर बट वी आर यू नो वी डू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वी डू कलेक्टिव इन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स सो the concept of one individual doing something alone jo ki america mein which is sacred by the way america mein to bada individualistic culture hai na ek banda jo hai khud karega sa yahan pe uska opposite hai to usme bhi I'm not surprised ki us ladke ne jaake foran abbu ko bata diya aur phir abbu ne jo bhi reaction hua wo jo bhi anyway you achieved your goal which is ki uski jo immediate distress thi wo kam ho gayi uski tabiyat thodi behtar ho gayi ab wo you know dilemma to bhai ka bhai nahi abbu ne usko kaha gaya nahi wo maulvi yusuf sahab ko kya pata wo wagaira wagaira jo bhi hai wo ho sakta hai phir aa jaye लेकिन अब वो तो एक फैमिली इशू है फिर वो लार्जर सोशल इशू है जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है अब यू नो आई थिंक यू डिड व्हाट यू हैड टू डू एंड यू डिड अ गुड जॉब ऑफ इट अब उस बार वो नहीं आया तो फिर ठीक है नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो दोबारा काम कर लेंगे उस पे
बिल्कुल एटलीस्ट द सीड हैज बीन सोन लाइक मतलब उसको एक डायमेंशन खुल गई है मे बी एट सम लेटर पॉइंट दैट विल बेयर फ्रूट तो बट कैरिंग फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन जो आपने कहा कि व्हेन वी आर डीलिंग विद पीपल इन आवर प्रैक्टिस वी आर नॉट जस्ट डीलिंग विद इंडिविजुअल्स हम पूरी फैमिलीज के साथ डील कर रहे हैं हम पूरी लाइक कुछ सोशल पैथोलॉजीज हैं कुछ हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कुछ हमारी इवन जो मेडिकल फ्रटर्निटी है हम कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ ऑफ एडोलेसेंस को री इन्फोर्स कर रहे हैं हमारे कुछ कंसेप्शंस ऐसे हैं जो जिस तरह से वो फादर लेबल लगवाने आया था या हमने कहा था इसको ठीक करो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिशनर्स विल कंप्लाई दे विल डू दैट दे विल गिव द लेबल एंड दे विल गिव द मेडिकेशंस एंड दे विल इग्नोर द साइकोलॉजिकल और द फैमिली साइड ऑफ द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर तो दिस इज सो मच टू डील विद तो एंड एटलीस्ट हम अब यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सोशली कुछ बात कर सकते हैं कि शायद उन सोशल पैथोलॉजीज के तरफ इशारा करा सकें
नहीं नहीं इशारा ना करा सकें वो खुल के बताएं उनको कि सोशल पैथोलॉजी है लेकिन उसमें अब कीपिंग यू नो द रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव कि एक इंसान चाहे वो सो कॉल्ड पेशेंट है यू नो वी ऑल डिसलाइक दैट वर्ड आई मीन You know, I'm a patient, you're a patient, you know, ye lafz hame istemal nahi karna chahiye, kyunki ye stigmatizing lafz hai na ye. So, jo shakhs aap se madad maangne aaya hai, aur aap jo uski madad karna chah rahe hain, wo one-on-one interaction, uspe behtri aap zarur kare aap. And you can certainly point out ki yaar, aapki family mein issues hain, aapki, you know, irgird ke jo log hain, unmein issues hain. Education institution ki baat kar lete hain, so this is not something hidden, I've written about it. टेक आर एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं कॉलेज की जहाँ पे मैं खुद भी पढ़ाता हूँ आप लोग भी पढ़े हुए हो सो मोस्ट ऑफ आर सो कॉल्ड टीचिंग सो कॉल्ड इन यूनिवर्सिटीज इज डन इन दैट वेरी ओल्ड टॉप डाउन सिस्टम वेयर नॉलेज इज सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर्ड और सपोज बी ट्रांसफर्ड पैसिवली फ्रॉम द टीचर कोट अनकोट हू सपोज टू नो एवरीथिंग एंड द स्टूडेंट हू सपोज टू बी द एम्प्टी वेसल वो उसको कुछ नहीं पता बताएंगे अब ये कोई नई चीज नहीं है साइंस ने 50-100 साल पहले बता दिया था कि पैसिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कोई चीज नहीं होती ये हो नहीं सकता नॉलेज हमेशा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट होती है स्टूडेंट्स खुद उसको अपनी इंटरेस्ट से उस चीज को अचीव करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में खबर नहीं पहुंची है। वही टॉप डाउन सिस्टम है, वही पुराना एक 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 दकियन उसी सा कि याद करो लिखो, याद करो लिखो, याद करो लिखो। कोई यू नो समहाउ हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में समहाउ द स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी बनी हुई है द लीस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, दे आर ऑलमोस्ट एन आफ्टर थॉट। नोबडी वांट्स टू नो कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, वो किससे पढ़ना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो यू नो हमारा तो यानी जो इवन जो तालीमी निज़ाम है वो भी क्रिटिकल थॉट को या सेल्फ थिंकिंग को इनकरेज तो करता नहीं बल्कि उसको डिस्करेज करता है। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एजुकेशन सिस्टम से गुजर के जब निकलते हैं तो उन्होंने सीखा कुछ भी नहीं होता। अब आप लोगों ने खुद ही मेरा भी यही है कि मैंने सीखा नहीं था, अपनी अपनी फॉर्मल सॉर्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन पाकिस्तान में खत्म करके फिर सीखना शुरू किया था। फिर समझ आई थी कि यार एक्चुअली पढ़ाई जो है ये नॉलेज जो गेनिंग है उसमें मजा भी आ सकता है इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ टॉर्चर, राइट। लेकिन अब उस निज़ाम हमने ऐसा बनाया है जिसमें हम फोर्स करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि ऐसे करो जैसे मैं कह रहा हूँ, और अगर आपको कोई इंटरेस्ट है हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप इस तरह पढ़े हमें इसमें जो हम कह रहे हैं वो करो और उस तरह से करो जिस तरह हम कह रहे हैं और कुछ नहीं करना। सो ये जाहिर है कि हमारी जहाँ से आज आपकी बात शुरू की थी जो हमारी लार्जेस्ट सोसाइटी है उसका एक रिफ्लेक्शन है ना कि वो अथॉरिटेरियन सॉर्ट ऑफ एक टॉप डाउन सिस्टम है जो हम कह रहे हैं उस तरह से करो। हालांकि यू नो फॉर इंस्टेंस अभी हमने बात की थी ये सेशन शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों से पूछा गया ये क्या एप्लीकेशन है जो आप यूज करवा रहे हैं, आपने मुझे बताया, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। सो यू नो माई स्टूडेंट्स मेनी ऑफ हूम माइट बी लिसनिंग राइट नाउ आर far, far ahead of me in terms of these technological advancing things, ये Insta live और ये Facebook live, मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग यंग लोग हो, आप लोग इस चीज से ज्यादा अपडेटेड हो, आप लोग एनर्जेटिक हो, आपको शौक है तो आप मुझे सिखाते हो। सो इफ आई एम अ टीचर द अप्रोप्रिएट एटीट्यूड ऑफ अ टीचर नीड्स टू बी यू नो आई वुड लव टू लर्न दिस अलॉन्ग विद यू, दैट वुड बी ग्रेट, लेट्स लर्न समथिंग टूगेदर, दैट्स द राइट एटीट्यूड ऑफ अ टीचर। And somebody who doesn't have that attitude shouldn't be a teacher. मतलब है कि मतलब अगर कोई teacher इस attitude से teacher बनाए कि मुझे सारा कुछ आता है तो उसको बिल्कुल teacher नहीं होना चाहिए क्योंकि the whole purpose of teaching is to learn. So ठीक है मुझे कुछ थोड़ा बहुत अपने life experience की वजह से पता है जो आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि आपका इतना life experience अभी नहीं है क्योंकि आप छोटे हो। उसके अलावा ये pretend करना कि मैंने 25 साल पहले 1994 में मैंने अमेरिका में रेजिडेंसी की थी, 98 में खत्म की थी, 99 में मैंने अपना अमेरिकन बोर्ड किया था, 20 साल पहले जो मेरी नॉलेज थी वो आज की उसकी एप्लीकेशन है ludicrous। नॉलेज तो एक साल में पुरानी, 6 महीने में पुरानी हो जाती है, जो मैंने उस वक्त सीखा था उसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं, अनलेस की कोई ऐसी चीज थी जो कोई यानी फ्रॉयड साहब की बातें थी या कोई ऐसी चीज थी जो कोई एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है जो अब तक वैलिड है somehow। So, मुझे एडमिट करना चाहिए कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो मेंटीज हैं आप लोगों की तरह या जो मेरे कहीं के स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं उनको बहुत सी ऐसी बातें पता हैं जो जिससे मैं भी बेनिफिट कर सकता हूँ, कुछ बातें मुझे पता है जिससे वो बेनिफिट कर सकते हैं। सो टीचिंग इज ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस एंड इट शुड बी ए कोलैबोरेटिव फन प्रोसेस, इट शुड बी समथिंग दैट टीचर एंड स्टूडेंट शुड डू टुगेदर रादर देन टीचर सेइंग मैं जो बताता हूँ ऐसे होता है, तेनू की पता है तू पता
सर। इसकी फ्लिप भी सर, द फ्लिप साइड ऑफ दिस लाइक व्हाट वी सी फॉर एग्जांपल इन द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के न्यू नॉलेज को इतना ज्यादा चढ़ाया जाता है कि व्हाट फ्रॉयड हैज टू से इज नाउ हिस्ट्री, इट्स आर्काइवल, इट्स लाइक जो फील्ड के बड़े थे जिनके कंधों पे चढ़ के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो हम कुछ कहने के काबिल हुए हैं, उनको अब यूनिवर्सिटी कोर्सेज में psychology ke courses mein they have the least importance. Psychiatrists can go through their training programs and become psychiatrists and not be able to name even the top 3 people of the field in the past 100 years. Ek uska flip side bhi ek tarah se ab jis tarah se aapne usko kaha ke the collaboration to grow, yes, like novelties aa rahi hain unko assimilate karna, lekin to remain attached to our tradition, our roots within the field.
And you're absolutely right, you said that the whole, you know, the key here is to develop a love of learning. This is the key here. If you enjoy it, if you like it, if you are passionate about it, then you will learn effectively, then you will learn well, then you will learn more. And the only way to do that is to figure out as a teacher, I mean, I'm also a learner, but I'm at the age where I'm also a teacher. So my task is to help figure out or help my students, for me to figure out क्या सीखना चाहते हैं, किस तरह से सीखना चाहते हैं, और उस तरह से उनको मैं सिखाऊं. अब जाहिर है कि देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस व्हिच वी हैव टू फॉलो, राइट? कोई आप डिसिप्लिन ले लें, अगर आप मेडिकल है या साइकोलॉजी है, अगर आपने कोई एक तो होता है ना लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, लेकिन अगर आपने एक एस्टैब्लिश बॉडी ऑफ नॉलेज में एक सर्टन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस अचीव करना है और फिर आपने उसमें एक डिग्री लेनी है, आपने उसमें एक सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने ये किया हुआ फॉर व्हाटएवर पर्पस, आपने आगे कुछ और करना है, उसका काम करना है, जो कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क तो आपको चाहिए कि आपने ये कुछ सीखना है, इतने सालों में इतना कुछ सीखना है. सो उसको तो हमने बाहर फॉलो करना है. हमें यूनिवर्सिटी टीचर, कॉलेज टीचर, जो भी है, आप लोग जो पीएचडी कर रहे हो, उसका एक बना हुआ है, वो आपने उसको मास्टर करना है. लेकिन उसके अंदर रहते हुए देयर आर मेनी वेज इन व्हिच टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, टू मेक इट कोलैबोरेटिव, टू मेक इट fun for everyone concerned, right? So I'll give you an example. I mean, recently, you know, COVID ki vajah se, we're sort of off the title of adolescence and mental health, but I guess we can come back to that. COVID ki vajah se university and college band hue hain. March mein lockdown hua tha, chautha mahina chal raha hai, hamari apni university band hai. So all of the universities and colleges, even schools, had to move quickly on to sort of online learning, right? Ye Zoom classes and all this kind of stuff, wo unko karna pad gaya. अब उसमें हमें भी साइकेट्री वालों को हमें आया कि आप अपने को लेक्चर जो थे वो ऑनलाइन लेक्चर को रिकॉर्ड करके भेज दें, ठीक है. सो मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, नो आइडिया. मैंने भी बता दे, फिर उन्होंने कहा एक स्लाइड शो बना दे, मैंने भी बना देते, उन्होंने स्लाइडें रिकॉर्ड कर दें. मैंने फिर अपने 19 साल के बेटे से पूछा, मैंने कहा यार बताए कैसे रिकॉर्ड करनी. वो आया फिर बाबा इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है. उसने मुझे डांटा भी दो तीन दफा, आपको समझ नहीं आई बाबा इस तरह, यार मुझे प्लीज बता दे, उसने बता दिया. अच्छा अब मैंने वो जब पहली दफा रिकॉर्ड किया मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, नई चीज थी ना. आई मीन आई एम टॉकिंग टू अ स्क्रीन व्हिच हैज अ स्लाइड ऑन इट. यूजुअली आई एम यूज्ड टू टॉकिंग टू पीपल गेटिंग सम यू नो ऑल दैट. वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग और व्हाटएवर. फायदे भी हैं, नुकसान भी है. बार मैंने कोशिश की, सो लास्ट मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया अल्कोहल अब्यूज पे था, राइट. सो वो 20-22 स्लाइडें थी, हर स्लाइड को मैंने एक्सप्लेन करना था. मुझे आपको पता ही है, मुझे फिल्मों का शौक भी है, मुझे शेर व शायरी का शौक भी है, मुझे म्यूजिक का शौक भी है. तो मैंने उसमें कुछ एल्कोहल से रिलेटेड कुछ फिल्मों के रेफरेंस डाल दिए, कुछ शायरी के रेफरेंस डाल दिए, जो मुझे पता थे. फिर वो हमने उसको अपलोड कर दिया गूगल क्लासरूम पे, एक केई का एक बना हुआ है, जो क्लास है उसकी वो बना हुआ. अच्छा उस पर मैंने अपनी मैंने ईमेल लिख दी और मैंने उसमें कह रिकॉर्ड भी कर दिया कि अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपने मुझे कोई फीडबैक देना है, कोई बताना है, कोई सजेशन देनी है तो मुझे ईमेल कर दें. उसमें 2-3 स्टूडेंट्स की ईमेल आई कि आपने बड़ी कमाल की उसमें यूट्यूब के लिंक डाले हुए हैं, आपने फिल्मों के रेफरेंस डाले हुए हैं, बड़ा मजा है, तो और लेक्चर भेजिए. अब यू नो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग, बट दे लाइक्ड इट. दे लाइक द फैक्ट दैट आई पुट मूवी रेफरेंस इन देयर और म्यूजिक रेफरेंसेज, व्हाटएवर, जो भी जिसको इंटरेस्ट है. कहने का मतलब है कि मेरी कोशिश ये थी कि वो ड्राई सा एक वो स्लाइडें पढ़ना वो ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज हो जो टू मी, आई मीन यू नो आई एम अ मिडमैन, सो यू नो आई डोंट नो व्हाट यंग पीपल आर इंटरेस्टेड इन नाउडेज एक्सेप्ट फॉर द यंग पीपल दैट लिव इन माय हाउस, बट आई सॉर्ट ऑफ ट्राइड टू पुट थिंग्स इन देयर दैट आई थॉट दे माइट फाइंड इंटरेस्टिंग, एंड दे डिड. सो आई वुड लाइक टू डू, यू नो आई लाइक टू डू मोर ऑफ दैट, बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एटलीस्ट मेक एन एफर्ट to get to know what young people like and what young people want to you know, the way they want to learn or whatever they want to learn, then try and give it to them. I mean, yaar, unki padhai hai, wo padh rahe hain, to aap unki, you know, unki jo wishes hain, jis tarah se wo karna chahte hain, us tarah se kyun nahi karte aap? Why not?
Sir.
I mean, yaar, you know, if we are unwilling to listen to them, are we saying that they're stupid? They don't know what they're doing? You know, that is silly. I mean, you know, kyunki पहली बात तो ये है कि 20 साल के बाद तो उन्होंने दुनिया चलानी है ना, मैंने तो नहीं चलानी, मैं तो रिटायर हो गया हूँ या हो सकता है मर गया हूँ. तो दे आर द वंस हु आर गोइंग टू हु आर गोइंग टू बी रनिंग द वर्ल्ड, सो आई शुड रिस्पेक्ट दैट. आई शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दे द फ्यूचर बिलोंग्स टू देम. यू नो द प्रेजेंट द नाउ बिलोंग्स वेरी ब्रीफली टू अस एंड देन द फ्यूचर बिलोंग्स टू देम. सो यू नो वी शुड टेक दैट इनटू अकाउंट एंड वी शुड टेलर आवर टीचिंग. We should tailor our treatment of them. We should tailor our interaction with them accordingly. They deserve our deepest respect rather than, you know, thinly veiled contempt that they get most of the time. So,
sir, before going to questions, जो कि हमारे यहाँ पे comments आए हैं, sir, एक problem, एक issue जिसके लिए खास तौर पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन जो एडोलिसेंट्स हैं वो उनके लिए वो उस टाइम बहुत माचो काम होता है सर, वो है एडिक्शन, द यूज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जिसमें कैनाबिस और भी बहुत सारे। सर उसके बारे में पेरेंट्स के लिए क्या आप बताएंगे कि पेरेंट्स क्या करें, क्योंकि एक लिहाज से उनको अगर वो बहुत ज़्यादा नज़र रखें तो वो बच्चों की ऑटोनॉमी को ब्रीच कर रहे हैं, और लेकिन अगर वो लेकिन उन्हें ये भी खौफ होता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये किसी गलत कंपनी में ना चले जाएं, एडिक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो सर उसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या होगा, पेरेंट्स कैसे डील करें इस चीज़ को, और अगर किसी बच्चे में ये डेवलप हो जाती है चीज़ उसके लिए क्या होगा।
Thank you for that. Very, very important pick. I think, so let me talk first as a parent of three teenagers. The way I do it is what my children are going to learn, or the way my wife does it. So I don't smoke or use any drugs, never have, and I'm quite open about my distaste of smoking and drugs. But not इसलिए नहीं कि कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे use ना करें, ज़ाहिर है मैं ये चाहता हूँ, बट इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ कि सिगरेट पीना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, ड्रग्स करना बुरी बात है, क्योंकि उससे बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल, सो मैं आई एम नॉट शाय अबाउट एक्सप्रेसिंग दैट ओपिनियन टू माई चिल्ड्रन, और उनको क्योंकि नजर अब इसी उसमें अभी यू नो एक क्लिशे है सॉर्ट ऑफ कि उनको नजर आ रहा है कि बाबा के कॉल और फेल में कोई तादाद नहीं है, जो बाबा वही बता रहे हैं जो वो कर रहे हैं, एक तो ये बात है। दूसरा मैंने पहले भी शायद बात की थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद योर चिल्ड्रन एज मच एज पॉसिबल, विच इज डिफिकल्ट टू डू, मोर डिफिकल्ट टू डू फॉर द फादर देन फॉर द मदर इन अ ट्रेडिशनल सिंगल इनकम अर्नर हाउस होल्ड। सो इसका मतलब ये है कि मैं आई वर्क आउटसाइड द हाउस, माई वाइफ इज अ होम मेकर, सो शी सीज मोर ऑफ द किड्स, आई सी वेरी, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ मेरी इतनी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है, एक्टिवली कोशिश होती है कि मैं कि उनके साथ टाइम जितना भी निकले, जो भी निकले, उनके साथ मैं स्पेंड करूँ, एंड देन आई एनकरेज देम टू टॉक अबाउट देयर लाइव्स इन जनरल। आई मीन आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर डूइंग, पार्टली आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज आई वांट टू नो कि वो किसको मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। सो वो जो एक विजिलेंट एक ओवरसाइट है वो रहती है, मैं कोशिश करता हूँ कि इतनी ज्यादा ना हो कि उनको लगे कि हमें जबरदस्ती हमारे पे सर्वेलेंस की जा रही है, लेकिन आई मेक इट वेरी क्लियर दैट आई वांट टू नो हु देयर फ्रेंड्स आर, वेयर दे आर गोइंग, कब वो कब जाएंगे, कहाँ दोस्तों को मिलेंगे, कब वापस आएंगे, वहाँ कौन कौन होगा, वगैरह वगैरह। तो दिस वी आर क्वाइट क्लियर अबाउट दैट, और ये शुरू से मैंने रखा हुआ है, इसमें कोई शक का या कोई वो नहीं है, और उन्होंने कभी मुझे ये मौका भी नहीं दिया कि कोई शक करूँ, मुझे तो नहीं कभी उस टाइम से लगा। सो उसमें चेकअप करने में वो करने में कोई हर्ज नहीं है, in fact that should be done, because as you know, while teenagers may struggle against limits placed on their behavior, they actually need those limits in order to structure their behavior. This is part of their personality development, right? So wo tang to honge ki aap hame kyun keh rahe hain ki jaldi ghar wapas aa jaye, kahan ja rahe hain, lekin wo us cheez ko wo जो लिमिट्स मैंने लगाए हुए हैं वो उस चीज के अगेंस्ट अपने बिहेवियर को मेजर करके अपना भी एक इंटरनल कोड बना रहे हैं कि हमने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। सो वो लिमिट्स जो है वो जरूरी है, उसमें वो तंग खुद भी होंगे, कभी कभी हमें भी तंग करते हैं, क्या मुसीबत है, आप क्या पीछे पड़े रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो उनके लिए जरूरी है। तो एक तो वो बात है, दूसरा यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि आप स्पेशली टीनेजर्स का ड्रग्स या एल्कोहल या सिगरेट्स को एक्सपोजर खत्म नहीं कर सकते। Even in a place like Pakistan, जहाँ पे supposedly एक इतना एक religious माहौल है, लेकिन हर कोने पे drugs मिल रहे हैं, cigarette मिल रहे हैं, स्कूलों के बाहर इधर उधर ये, तो उसको और अब तो खैर किसी जगह जाने की जरूरत भी नहीं है, अब तो सारा कुछ यू नो इस ये जो इतनी जो खूबसूरत सी चीज है हर बंदे के पास, जिसको सेल फोन कहते हैं, सारा कुछ घर आ जाता है। सो देयर इज नो वे टू ये हो नहीं सकता कि आप बच्चों का एक्सपोजर जो है वो खत्म कर देंगे। So, वो उनको वो सारी चीजें नजर आ रही हैं, वो सारी चीजें के साथ उनका एक्सपोजर हो रहा है, अब वो हो सकता है एक्सपेरिमेंट भी करें पीयर प्रेशर में आके, लेकिन वहां पे वो अगर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे या अगर वो सोचेंगे या अगर उनको ऑफर किया जाएगा, तो वहां पे वो जो ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो काम आएगी कि अगर आपने उनको ये चीज बताई भी है या आपने डेमोन्स्ट्रेट की भी अपने बिहेवियर से कि यार ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा 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 करो, ऐसे ना करो, तो वो आके आपको बता देंगे, अपनी अम्मी को बता देंगे, मुझे बता देंगे, और उसपे फिर वो एक डिस्कशन, ओपन डिस्कशन घर में हो सकती है कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना। सो यू नो एज लॉन्ग एज यू फॉर्म द मॉडल कि ऐसा होना चाहिए घर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आई थिंक यूर इन गुड शेप। अब अगर खुदा ना खास्ता आपने सवाल पूछा था कि बच्चा अगर इन्वॉल्व हो जाता है ड्रग्स में, अल्कोहल में, वट एवर उसमें, अब वो उसका क्या करना है, वो जाहिर है आई मीन आप भी साइकाइट्रिस्ट हो, अगर वो माइल्ड इशू है तो यू कैन ट्राई एंड वर्क आउट पेशेंट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशन से हेल्प लें, साइकोलॉजी से हेल्प लें, अगर दवाई की जरूरत है जो कि एडोलेसेंस में हम अवॉइड ही करते हैं ज्यादा, तो आप कर लें। अगर बहुत सीवियर इशू है खुदा ना खास्ता, कोई एडिक्टिव चीज है, कोई हेरोइन है, कोई ये है, कोई वो है, तो देन यू नो एडमिशन भी कहीं हो सकता है, अरेंजमेंट कहीं से एडमिट करके वहां से करके कर लें, लेकिन वो ये समझते हुए कि एडिक्शन इस किस्म की चीजें नहीं है, फिर लॉन्ग टर्म इश्यूज बन सकते हैं पोटेंशियली, और इस पे फिर लॉन्ग टर्म काम करने की जरूरत होती है। जैसे हमने पहले बात की थी कि वो जो प्रॉब्लम है वो इमर्ज एक माहौल से हो रही है ना, घर के माहौल से, फैमिली के माहौल से, तो उस पे अगर फैमिली कहेगी इसको ठीक कर दें बाकी सब को छोड़ दें, तो वो फिर यूजली वो फिर काम उस तरह से नहीं करता, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो बच्चा या वो जो यंग पर्सन था वो उस तरफ गया था, वो अगर प्रॉब्लम घर में वहीं के वहीं रहेगी या उसके स्कूल का इशू है, यूनिवर्सिटी का इशू है, तो फिर इट वॉन्ट वर्क इन द लॉन्ग टर्म। बट लकीली हमारा जो क्लोज सोशल स्ट्रक्चर है उसमें, क्योंकि पकड़ हमारे पेरेंट्स की, फैमिली की ज्यादा होती है, उसमें वी हैव अ लिटिल बिट मोर लेवरेज टू इन दिस केस फोर्स द यंग पर्सन टू डू व्हाट वी वांट हिम टू डू, व्हिच इन दिस केस सबसे सबसे केस में वो अच्छी चीज है कि हमारे पास एक कंट्रोल होता है, जबरदस्ती उनको रोक के वो हम कर सकते हैं और उस चीज को फिर आगे जाके रिजॉल्व कर सकते हैं।
सर अगर 10 मिनट्स मोर हम कुछ क्वेश्चंस सर ले लें।
जरूर।
एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी ब्रिंग सो मच रिलीजियस डिस्कशन इन साइकेट्री? सर अगर हम इसी को थोड़ा सा ब्रॉड कर लें, व्हाई डू वी ब्रिंग सो मच कल्चरल डिस्कशन इन साइकेट्री? बिकॉज रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर और इसमें कोई भी कल्चरल और इंस्टीट्यूशन आ सकता है, तो सर उसके बारे में सर क्या ये रेलिवेंस है?
सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जब्बार साहब को एक्नॉलेज कर लूं, जो बहुत ही ब्राइट ब्रिलियंट मेरे स्टूडेंट है और साइकेट्रिस्ट बनने जा रहे हैं। उसमें इनका एक सवाल था कि इसमें एक साइकेट्री को हम साइंटिफिक मैनर में क्यों नहीं देख सकते और उसमें हम रिलीजन को क्यों ऐड कर रहे हैं। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि बिकॉज साइकेट्री एंड मेंटल हेल्थ इवन दो ब्रॉडली स्पीकिंग इज बेस्ड इन द ब्रेन, द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ साइकेट्री एंड साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ आर नॉट एज साउंड एज अदर ऑर्गन सिस्टम सो टू स्पीक। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं ब्रेन फंक्शन के बारे में जो अभी हमें नहीं पता, और मेंटल इलनेस और ब्रेन फंक्शन का एग्जैक्ट लिंक क्या है वहां पे अभी हम पहुंचे नहीं, होपफुली आस्ते आस्ते हम पहुंच जाएंगे। सो एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो काम हम करते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, उसमें बहुत सा उसमें फैमिली के इशूज होते हैं, सोशल इशूज होते हैं। एक फैमिली जो है वो एक सोसाइटी में रहती है, एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। ये जो कल्चर का लफ्ज़ है, लोग इससे परेशान होते हैं, कल्चर का सिर्फ मतलब ही होता है कि एक एक एरिया की, एक रीजन की जो जो कस्टम्स होते हैं, जो लैंग्वेज होती है, जो फूड्स होते हैं, जो उनके रीति रिवाज होते हैं, जिसमें उनका रिलीजन भी शामिल होता है। सो इट रियली जस्ट मींस द मेथड ऑफ लिविंग और द मोड ऑफ लिविंग और द वे ऑफ लिविंग ऑफ अ सर्टेन पीपल एट अ सर्टेन टाइम इन अ सर्टेन जियोग्राफिकल रीजन, दैट्स व्हाट अ कल्चर इज। सो रिलीजन भी उसका हिस्सा होता है। सो क्योंकि हम फैमिली की, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उसमें कल्चर इशूज तो आएंगे। और हमारा जो साइकेट्री का जो काम है, मेंटल हेल्थ का जो काम है, उसमें रिलेशनशिप्स, फैमिली, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें क्योंकि उसमें शामिल होती हैं, तो उसको उससे डाइवोर्स नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे से ये कोशिशें जारी हैं अमेरिका में, तो बल्कि इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि उस चीज़ को अलहदा रख के, कल्चर को या सोशल एस्पेक्ट को अलहदा रख के सिर्फ इंडिविजुअल पे काम करें या सिर्फ ब्रेन पे काम करें, सिर्फ एक साइंटिफिक चीज़ पे काम करें, लेकिन उस चीज़ को एक एक इंसान की मेंटल फंक्शनिंग या उसकी जो इंडिविजुअल फंक्शनिंग है, उसको अगर सोशल फंक्शनिंग से अलहदा करके हम देखेंगे तो वो सिर्फ आधी पिक्चर रह जाएगी। बाकी अगर आप सिर्फ हाफ पिक्चर देख रहे हैं, सिर्फ इंसान को देख रहे हैं उसको, बाकी आपने सोशल एस्पेक्ट को अलहदा कर दिया, तो आपको तो यू आर ओनली लुकिंग एट हाफ द पिक्चर। सो यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर विदाउट एडिंग द सोशल कंपोनेंट। सो वो करना जरूरी है। और उससे सवाल ये होता है कि उसके बारे में हम कर क्या सकते हैं, सोसाइटी के बारे में कर बहुत कुछ सकते हैं, मेडिकल परस्पेक्टिव शायद ना कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी किस तरह स्ट्रक्चर हुई है, सोसाइटी में क्या चीजें हो रही है, उसको समझना तो जरूरी है ना। अगर हमने उस पर बात करनी है, उस पर उसको समझना है, फिर अगर उसकी कोई एस्पेक्ट को चेंज करना है, पहले समझेंगे तो चेंज करेंगे ना, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है, वो जाहिर है।
एक और क्वेश्चन टू हाउ टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर डायलेमा. सर ये क्वेश्चन तब आया था जब हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स और बच्चों का जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो एक तो इस सवाल के साथ ही सर एक दूसरा सवाल भी अगर हम जोड़ लें कि इज देयर एनी वन साइज फिट्स ऑल. क्या कोई इस सवाल के उसमें क्या हम कोई ऐसा जवाब दे सकते हैं कि ये जवाब है जो आपने हर उसमें अप्लाई करना है, या ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वेरी करेगा.
लगता है कि मेरे सारे मियो के स्टूडेंट्स ही सुन रहे हैं. डॉक्टर फौजिया चीमा आज दैट क्वेश्चन एंड आई शाउट आउट टू डॉक्टर फौजिया हु इज अ वेरी ब्रिलियंट डॉक्टर एंड होपफुली विल बी ऑन हर वे टू बिकमिंग अ साइकियाट्रिस्ट सून. पेरेंट्स और टीनेजर्स का या बच्चों का अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने का कोई जनरल तरीका है या नहीं है. आई थिंक यहाँ इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकते हैं, थोड़ी बात उसकी भी है. सो बिल्कुल है, दो तीन मोटे मोटे जनरल रूल हैं, कुछ मैंने पहले बयान किए थे दोबारा कर देता हूँ. नंबर वन, पेरेंट्स नीड टू रिस्पेक्ट देयर चिल्ड्रन. दे नीड टू रिस्पेक्ट देयर चिल्ड्रन इंटेलिजेंस, देयर चिल्ड्रन्स एबिलिटीज, देयर चिल्ड्रन्स यू नो बर्थ राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस. ये एक बुनियादी चीज है. बच्चे जो हैं वो मेरे बेटे ने मुझे पढ़ के सुनाया था, वो खलील गिब्रान की कोई पोएम थी. Something along the lines of they are from you but they don't belong to you. Something in the lines of their children are, I don't know, Azam, you probably might know more about that. But, you know, while I'm talking, you can look that up and then you can quote that to us. दूसरी मैंने बात, तो एक तो ये mutual respect. हम expect करते हैं अपने बच्चों से कि वो हमारी respect करें, लेकिन हम उनकी opinions की respect अक्सर नहीं करते. So it doesn't work that way. अगर वो आपस में नहीं हो गया. अच्छा, दूसरा मैंने पहले बात की थी open lines of communication. ठीक है. So you know, we need to give them the freedom to express their opinions, to talk about whatever issues they have without being judgmental about it, without them feeling that we are you know, judging them, you're telling other people, you're whatever. You know, they need to be able to have that trust in us in order to confide if something is bothering them. At the same time, we need to give them और ये हमारे घर में struggle होती है कि मेरी जो बेगम साहब आए हैं वो कहती हैं कि बच्चे सारा को मुझे बताते हैं और बच्चों ने जो आपको बताया है मुझे बताया है वो बेगम साहब को बताऊँ. बच्चों को अब समझ आ गई है कि कई बार बाबा को जो हम बात बताते हैं वो मामा तक नहीं पहुँचती. बाबा keeps our confidence, which is very important for teenagers, by the way. It is very important for teenagers as they get older, from as they move from you know, 11, 12 and onward into teenage, that they have some privacy, some confidentiality about the way they do things. So I have no interest in prying into their lives, tumhare dost kya kar rahe hain, ye kya kar rahe hain. They can have their privacy. I don't need to know everything. Agar koi aisi baat hai jo aap mujhe batana chahte ho, bata do. Agar koi aisi cheez hai jo mujhe pata lagegi, jo mujhe lagta hai ki khatarnak hai ya aapke liye problematic ho sakti hai, to phir main khud hi pooch lunga. उसके अलावा आपने प्राइवेसी रखनी है अपनी, मुझे नहीं ना बताओ, कोई बात नहीं. इट्स ऑल राइट. आई मीन आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट दैट आई हैव गिवन यू सम गाइडेंस इन ऑर्डर फॉर यू टू मेक योर ओन डिसीजंस सेफली, राइट. एंड इफ यू वांट माय गाइडेंस देन यू कैन आस्क फॉर इट, दैट्स ओके. तो ये एक मोटा सा सूल है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फाइन लाइन, बट किया जा सकता है. उसके अलावा आई मीन यू नो इफ यू प्रोवाइड देम अ हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम जहां पे वो उनको खाना पीना मिल रहा है, उनको हेल्दी एंटरटेनमेंट मिल रही है, उनको हर वक्त जज नहीं किया जा रहा, उनको जबरदस्ती, जिस तरह पहले वो यूसुफ ने बात की थी कि वो एक वो रिलीजियस गिल्ट थी, वो बच्चा परेशान था, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, सॉर्ट ऑफ लाइक एन ओपन एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट. आई थिंक मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स. और फिर हाँ, एक और एस्पेक्ट, यू नो आजम, वी ऑफन टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टेंस, एक फॉर एग्जाम्पल एक दिल का स्पेशलिस्ट है, राइट, अ कार्डियोलॉजिस्ट. So a cardiologist who's overweight and who smokes and who's out of breath is not a good role model, right? Yes, so a psychiatrist who does not have good mental health is not a good role model, right? So agar parents apni mental health, apni jo perspective hai usko theek rakhenge to usse bachchon ko fayda hota hai. Uski specific example is very briefly, meri ek khatoon hai, inko main treat karta hu, jinko significant depression ka problem hai. सेल्फ म्यूटिलेशन भी करती हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन इट. लेकिन उनका जो उनकी जो डिस्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उसका सीवियर इफेक्ट उनकी टीनेज बेटी पे आ रहा है, क्योंकि वो बेटी उनको देख रही है ना. सो अगर पेरेंट्स में कोई इस तरह के इश्यूज हैं जो पेरेंट्स खुद डिस्ट्रेस्ड हैं, कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, कोई सब्सटेंस अब्यूज के इश्यूज हैं, पेरेंट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, बिग फैक्टर, माँ बाप का आपस में कॉन्फ्लिक्ट या फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे होते हैं उससे बच्चों का बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है. सो एज मच एज पॉसिबल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स नीड टू बी रिजॉल्व्ड, स्पेशली पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ. So, अगर ये चीजें हम मैनेज कर लिया जाए, so that you know that that tends to help our children. And children are very resilient. Teenagers are very resilient. They, I mean, you know, most of us survived our childhood and our teenage. We all survived our parents, right? Yes. And I'm sure our children will survive us.
Yes. Sir, one last question, sir. ये भी आपके एक student Ali Hassan ने. How should parents speak with their young children about sexuality, keeping in mind our cultural norms? सर कोई हैंड्स ऑन एडवाइस फॉर पेरेंट्स के वो किस तरीके से बात करें.
एक्चुअली नो, आई कैनॉट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई हैड अ डिस्कशन. माय चिल्ड्रन हु आर माय, आई हैव अ सन हु इज 19, अ सन हु इज 17 एंड अ डॉटर इज ऑलमोस्ट 14. एंड एनी टाइम दैट दिस इशू हैज बीन ब्रॉट, आई यूजुअली ब्रिंग इट अप एज अ जोक रियली. And they've all said, "Mama, stop! Don't talk about that." You know, so they kind of just make a face and they say, "We don't talk." So, you know, मैंने कभी उनसे इस तरह से direct बात नहीं की. I don't think उनकी अम्मी ने कभी की है. I'm recalling when I was growing up. This is before internet, before all this. एक ज़माने में कोई किताब मुझे अपने घर में के मिली थी जो कहीं से मेरे, you know, I don't know, my father or my taya had bought from America maybe. Which was a basic sort of book about sex education geared towards, I think, younger kids or maybe pre-teenagers. लेकिन उस तरह का कोई रिसोर्स मटेरियल हमारे मुल्क में तो है नहीं. अब इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल होगा, लेकिन इंटरनेट पे वो क्या देख रहे हैं और क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं मुझे नहीं पता. एंड सो आई हैव सॉर्ट ऑफ नॉट, यू नो, एक दो दफा जब वो कोई टेंजेंशियली वो बात निकली और मैंने थोड़ा सा बात करने की कोशिश की, मेरे बच्चन का बाबा, डोंट टॉक अबाउट दिस, वी डोंट वांट टू टॉक. सो आई हैव दिस बैक टू, सो यू नो, आई डोंट हैव अ गुड आंसर टू व्हाट डॉक्टर अली हसन इज आस्किंग. आई थिंक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. अब उसमें एक प्रॉब्लम ये है जो मुझे एक खबर मिली थी कि हमारे, मेरे बच्चों का जो स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, sort of an elite private school, वहां पे आई बिलीव एट सम पॉइंट को सेक्स एजुकेशन की कोई क्लास इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतना हंगामा हुआ था, पेरेंट्स ने इतना हंगामा किया था कि हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, यू नो हाउ इट इज ओवर हियर, बच्चों को बेहाई बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, इट्स जस्ट बेसिक सेक्स एजुकेशन, यू नो. लेकिन इतना वो यानी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि वो जाहिर है उसमें फिर वो लोग गुस्से हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. हमारे तो मेडिकल कॉलेज में, आपको आदम याद होगा, इवन मेडिकल कॉलेज में भी ये चीज नहीं पढ़ाई जाती थी, बेसिक, यू नो, बेसिक एजुकेशन अबाउट सेक्सुअलिटी, इवन दो वी आर बिकमिंग डॉक्टर्स, हमें वो नहीं पढ़ाया जाता था. तो हमारे कल्चर में तो अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का उसको टैबू बनाया गया है कि वो बिल्कुल ही, यानी बच्चों के तो दूर की बात है, इवन बड़ों को नहीं बताया जाता, कॉलेज के लड़के लड़कियों को कोई बेसिक एजुकेशन नहीं दी जाती. सो यू नो, रिसोर्सेज पाकिस्तान में आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, शुड बी, आई वुड थिंक. बट
सर, इवन अली और मैं कल ही बात कर रहे थे कि हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हेड से शुरू करते थे, एब्डोमेन तक पढ़ाते थे, नीचे लोअर लिम्ब पढ़ाते थे और दरमियान से क्रैनियम छोड़ देते थे. तो हमें इवन डॉक्टर्स, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स को जो था वो वाला जो सेक्शन था हमारी एजुकेशन का, वो स्किप कर दिया जाता था.
और इसमें इसी आदम में इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आज मैंने, अभी हमारा आज एक पेशेंट आया था, and I was, we were talking, depression का patient था, उसको कोई sexual dysfunction था, मेरी एक PG trainee थी, उसने उसको examine किया, थोड़ी सी उसके बात हुई, फिर afterwards I sent her an article on sexual dysfunction, उसको क्या उसकी treatment की जानी चाहिए. Now I'm going to have her present that to our training class and sort of talk about that, because I know कि वो कितनी बड़ी deficiency है हमारे, और मैं बात कर रहा हूँ postgraduate psychiatry trainees की, medical students भी नहीं है, यानी doctor हैं जो psychiatry पढ़ रहे हैं. And you know and I know कि कितने लोग हमारे पास आते हैं particularly इसी problem के साथ, यानी कि sexual functioning का problem है, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना, medical reasons होते हैं, drugs, alcohol होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. So अगर वो लोग ये problem लेके आते हैं तो फिर अगर हमें खुद भी नहीं पता तो हम उनको क्या बताएंगे, पहली बात. दूसरी बात है कि बिकॉज ये इतना taboo subject हमारी society में बना हुआ है, शुरू से, बचपन से बना होता है, उसकी वजह से और ज्यादा उसके अगेंस्ट अराउंड दैट इशू इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि लोग उस पर बात नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होती हैं। अब ये एक बुनियादी सी चीज है जिंदगी में, यू नो इट्स समथिंग दैट एवरीबॉडी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई मीन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इजंट इट? सो लेकिन क्योंकि हमें कोई इसके बारे में कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, उसमें उसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, बीमारियां क्या हो सकती हैं, क्या होगी, तो वो फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इतनी मुसीबत बन जाती है वो, यानी जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी, जो उसकी जो उसका पार्टनर है उसके लिए भी, फैमिली के लिए भी, इट जस्ट बिकम्स अ ह्यूज मैस बिकॉज हमने शुरू से लेके किसी किस्म की कोई बेसिक एजुकेशन अपने 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 बच्चों को, यंग लोगों को किसी किस्म की कोई प्रोवाइड नहीं की, तो बाद में जाके इट क्रिएट्स ह्यूज प्रॉब्लम, बड़ा मसला बनता है।
तो सर हम ये
तो ये तो आपने डायरेक्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात की ना, वी the neurotic problems that which will manifest as depression and anxiety, jisme wo sexual repression is the cause, ke jo Freud ka initial literature tha that was in a European society where sexual repression was a problem and he would see a lot of those conversion cases, aur ab hum ye nazar aata hai ke west mein conversion ya jo bhi dissociation itna zyada nahi jitni hame apni ERs aur OPDs mein dekhne ko milta tha, and that's perhaps because now we have that level of sexual repression in our society. And it may be a good idea for us to have a dedicated dedicated program of Psych Baithak just on that.
I think it would be great service. It would be.
Inshallah. Great. Azam, you were saying something? I had lost you. You're back. जी जी आज बोलो प्लीज।
तो सर क्या हम ये इस अगर हम ये एनालॉजी अपने सामने रखें कि यस देयर इज अ टाइम कि जब आप बच्चों के सामने इस तरह की बातें ना करें, हमारी ऑफ कोर्स हमारा कल्चर में ये बताता है, बट देयर इज अ टाइम कि जब आप बच्चे को बड़ा होने का मौका देना चाहिए, बल्कि उसको खुद हाथ पकड़ के बड़ा करना चाहिए कि अब टाइम हो गया कि अब आप बड़े हो जाए, अब आप मजीद बच्चे मत रहे।
सर वो एक जोक भी है ना कि पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ 20 करोड़ एंड नोबडी हैज सेक्स।
वेल आई वंडर हाउ वी गॉट टू 20 करोड़ विदाउट
cuz we're not talking about it.
यूसुफ भाई एंड सर आई थिंक अब हमें एक घंटा हो चुका है, अब हम लोगों को और ज्यादा यूसुफ भाई आप और मैं कम लोगों को और ज्यादा बोर ना करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने सर अपना सर यू टोल्ड अस के आप आज बिजी हैं लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच सर। और सर मैं सर आपको सिर्फ ये कहूंगा कि वो आप अपना डंडा डिपार्टमेंट में चलाते रहे
जो डिपार्टमेंट के लोग सुन रहे वो बात कर ले कि फायदा हुआ है डंडे का। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू वेरी मच,
Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much.